इनका सवाल यह है कि कुछ लोग ये कहते हैं, ज़रा सुनिएगा, कि दुरूद इब्राहिमी अधूरा है, जो कि नमाज में है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन और अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो जिक्र है, और इसको पूरा करने के लिए दुरूद तंजीना और ये कुछ है। दुरूद की हकीकत क्या है? एक है मसनून, जो अल्लाह के नबी की सही हदीसों से मिल गए, ठीक है। दूसरी किस्म है गैर मसनून, यानी जिसका कोई रेफरेंस नहीं। मसनून तो एक कैटेगरी है, उसको छोड़ दें। जो गैर मसनून है ना, उसके आगे दो किस्में हैं। एक वो जैसे सिर्फ अल्लाह के नबी की तारीफ़ की गई है, ना उसमें गलूव है, ना उसमें कुछ शिरकिया बातें हैं, वो ऐसे ही है जैसे आप उर्दू, इंग्लिश, नॉर्वेजियन में किसी की तारीफ़ करते हैं। अब वो आप करें मैं करूं, उसकी क्या हैसियत है? बात समझें, कोई पढ़ता है तो अपनी मर्ज़ी से पढ़ता है, टाइम वेस्ट होगा। बस वैसे ही जैसे आप नात नहीं पढ़ते। देखिए, दुरूद इज़ इक्वल टू नात। एक ख़ास लहज में समझें कि नात बहुत प्यारी चीज़ है। आप इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी की मोहब्बत आए आपके दिल में दूसरे के, बहुत अच्छी चीज़ है। ये वो दुरूद है जिसमें कोई शिरकिया बात नहीं। आप उसको दुरूद लखी कहते, माही कहते, उसको तंजीना कहते, मुझे नहीं पता इनके अंदर क्या है, अंदाज़ा है क्या है, लेकिन इनकी हैसियत ऐसे जैसे उर्दू में आपने नात की रिदमिकली और आपने वो नसर में अल्लाह के नबी की तारीफ़ें कर दी। सवाब नहीं होगा उस पर, गुनाह इंशाल्लाह नहीं होगा, ठीक है। तीसरी किस्म दुरूद की जो सबसे ख़तरनाक है, ना अल्लाह के नबी से साबित, ना सहाबा से साबित, यानी गैर मसनून, लेकिन उसमें शिरकी अल्फाज हैं, वो हैं जुर्म, काबिले जुर्म है। आप किसी भी बात को अगर सही तरीके से करते रहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन जब आप उसमें एग्जैजुरेशन कर देंगे तो ये होगा। फिर दोहरा देती हूँ, अल्लाह के नबी ने जो दुरूद खुद पढ़े, उम्मत को सिखाए, जिसमें सबसे बेहतरीन दुरूद इब्राहिमी है, तभी तो नमाज में है। इसमें मुख्तसर भी है, इसमें सारे हैं। लोग कहते हैं ना सिर्फ दुरूद इब्राहिमी पढ़े, नहीं, इतने खूबसूरत दुरूद हैं, लेकिन हम जब दूसरी चीज़ों के आदी हो जाते हैं तो हमें असल चीज़ भी नहीं दिखती। 12 मुख्तलिफ किस्म के दुरूद हैं, नमाज में कहाँ पढ़ते हैं? तशहुद आप क्याम में क्यों नहीं पढ़ते? कितनी इज्जत होगी अल्लाह के नबी का नाम खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह के बाद पढ़े, नहीं पढ़ सकते। ये भी लिखा हुआ है कि कब पढ़ना है, किस जगह पढ़ना है, आपने अपने सहाबा को दिया। देखिए, नबी से आप मोहब्बत करते हैं तो आप उनकी हदीस तो पढ़िए। ये जितनी चीज़ें आज हमारे यहाँ और ख़ास तौर पे रबी अव्वल के महीने के नाम पर लोग महफिलें सजाकर कुछ करते हैं, उसमें क्या डर इस बात का रखिए कि मोहब्बत के नाम पे नाराज़ ना कर दें। मैं आपको एक इसकी मिसाल देती हूँ, माँ बाप से मोहब्बत होती है लेकिन हम इजहार नहीं करते, कमी करते हैं। किसी को भी आप, जिसकी आपके दिल में कदर है, आप उससे मोहब्बत करते हैं, दोस्त कह लीजिए कोई भी, लेकिन आप उसकी मोहब्बत में ऐसी अजीबोगरीब बातें करें कि उसको शर्म आने लगे, तो अच्छा लगेगा उसको? आप अपने उस्ताद से मोहब्बत करते हैं बिलफर्ज, तो क्या आप उसके पास आके गीत गाएंगे, उसको गाने सुनाएंगे आप मोहब्बत वाले? वो तो घबरा जाएगा। आप मोहब्बत में उसको देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, क्या आप अच्छा कर रहे हैं? नहीं अच्छा कर रहे। तो बादब बाद नसीब है। तो बात का खुलासा क्या है कि अल्लाह के नबी भी खुश होंगे मेरी इस बात पे। सिस्टर आई, आप ही जैसे लोगों में से माशाल्लाह बड़ी सीधी भोली भाली खातून थी, मेरे पास किताब है, मैं बड़े दुरूद पढ़ती हूँ, मुझे बताएं। उन्होंने जब ये मौजू सुना, मैंने कहा आप कल ले आइएगा, दिखाएं क्या पढ़ती हैं। इतनी मोटी किताब थी, यकीन करें, जो वो लेके आई, मैंने कहा छोड़ जाइए इधर, मैं इसको आज देखती हूँ, कल बता दूंगी। मैंने बाद में उसको खोला, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ ठीक भी थे, ऑफ कोर्स दुरूद इब्राहिमी भी उसी में ही था, इनमें से अगर 10-11 हैं तो 2-4 इसमें से भी थे, बट दुरूद लखी, दुरूद माही, दुरूद ताज। आपको पता है कि ये नाम क्या, लखी क्या, लख, लख क्या होता है, 100,000 उर्दू का लफ्ज़ है कि पंजाबी का कि इंग्लिश का, क्या अरबी नाम है? उर्दू नाम है, बल्कि पंजाबी नाम कह ले। और एक नाम जो बोला, तंजीना, निजात देने वाला, यानी दुरूद माही के, माही किसको कहते हैं? ये फिल्मों वाला माही नहीं है, फिशरमैन, पानी के साथ ताल्लुक़ है। नाम उर्दू और पंजाबी के हैं, वो मेड इन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश हो सकता है, लेकिन अरब का नहीं जहाँ ये दीन उतरा था। तो मुझे उम्मीद है कि बात समझ आ गई है। बहुत ही अच्छा सवाल है इनका, टू दी पॉइंट है हमारे इस मौजू से मुतल्लिक, और वो क्या है कि मुनकर नकीर कब सवाल करते हैं। देखिए, बहुत वाज़े हदीस है कि जब मैयत को कब्र में डाला जाता है, फिर फयात यादनी मलकानी फयुज लिसानी, ठीक है, कब्र में दाखिल होने के बाद, तभी तो हुक्म है कि जल्दी से दाखिल करो। कुछ लोग एक हफ्ता लेट करते हैं, पसंदीदा ही नहीं है। मैं नहीं ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले सकती कि खुदा ना खास्ता कोई लंदन में फौत हुआ है तो आप 10 दिन रखिए इधर, फिर पाकिस्तान उसके गांव ले जाएं, फिर करें और फिर ये होगा। अगर वो नेक मैयत है तो वो अजियत में, वो तो क्या कहती है, अब तो याद होगा, कद्दमोनी कद्दमोनी, मुझे जल्दी ले जाओ, मुझे जल्दी ले जाओ। ठीक है, और अपने जाने वालों के लिए हम बुरा गुमान तो कर ही नहीं सकते कि वो जहन्नमी है, हम कब्र में ही नहीं डालते ताकि ज़रा वो कुछ दिन और आराम कर लें। अब बस बातें है ना, तो दफन करने के साथ है, इल्ला ये कि किसी का जिस्म ख़त्म हो गया, वो तो वजूद ही ख़त्म हो गया उसका। तो ऐसी बातों में भी जितनी बात समझ आ जाए उसको मान लीजिए, और जो बात समझ नहीं आती उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, किसी से भी बदगुमान ना हो, किसी मसलक के इमाम, किसी खतीब, किसी भी प्रीचर यानी जो मुबल्लिगीन है उनके बारे में बुरा ना सोचें। अपने लिए ये पल्ले से बांध लीजिएगा, कल अल्लाह व कल रसूल, उसमें तो कोई शक नहीं है ना। स्टैंप देखकर चीज़ खरीदते हैं ना, रियल है कि नहीं है, आप कुरान सुन्नत की स्टैंप देख लें। कोई दूसरी चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव भी दिख रही है ना, हो सकता है कोई वजीफ़ा बड़ा टेम्पटिंग है, आप ये 10 दफ़ा पढ़ें तो आपके बेटे का रिश्ता हो जाएगा। आप ये कह दें कि अल्लाह चूंकि इस पे तेरे नबी की कोई बात नहीं, मैं नहीं पढ़ती तो मेरे बेटे का रिश्ता वैसे ही करा दे। बात बात है, देखिए ये बात मेरी नहीं है, आप सोचें ना, ये आप कह रही हैं, ये शुरू से लेके हमारे असलाफ जिनसे ये दीन शुरू हुआ उन्होंने अल्लाह के नबी और अल्लाह की बात को यूँ पकड़ लिया था, और तभी तो हमारा दीन आज तक महफूज है। देखिए यहूदियत और नसरानियत में तब्दीलियाँ क्यों हुई, उन्होंने किताबों में इजाफे भी कर दिए, कुछ निकाल भी दिया, तो मोहब्बत ही के नाम पे होता है, ये कभी भी नफरत के नाम पे नहीं हुआ। तो अब चलते हैं हम अपने बुक के सेशन पे ताकि आज का गोल पूरा हो। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो हमें हक बात पे जोड़ दे, हक थोड़ा हो कड़वा हो फिर भी ठीक है, लेकिन बातिल मीठा हो, मज़े का लगे जो भी लगे, लेकिन उसको मैं आप उसको हुज्जत नहीं बना सकते। पेज नंबर 168, टॉपिक कब्रों में इंसान की हालत, कब्र का बयान। इसमें हमने जो पिछले सेशन में टॉपिक्स कवर किए थे उसका खुलासा कीजिए। एक तो हमने देखा था नेक आमाल अजाबे कब्र से ढाल होंगे, फिर फितने कब्र से महफूज रहने वाले लोग कौन है, मामूनून, और कब्रों में इज्साम की हालत क्या होती है। इस टॉपिक ही को हम कंटिन्यू करेंगे, कब्रों में इज्साम की हालत, कैफियतुल अजसामी फिल कुबूर। और अगर आप मसले नंबर के साथ अगर इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो मसला नंबर 151, जी 151 से हम कंटिन्यू करेंगे। कब्र के अंदर जिस्म की क्या कैफियत होती है, और हमें इस पर अल्लाह का लाख शुक्र करना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मोहसिन ने हमें आने वाले वक्त की वो चीज़ें भी बता दी जो हम सारी ज़िंदगी कोशिश करते रहते, कोई गैजेट बना लेते, कुछ भी करते, लेकिन हम उसको नहीं पा सकते थे। ठीक है, और इसमें हम आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं प्लीज़, कैफियतुल अजसामी फिल कुबूर, कब्रों में इजसाम की हालत। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के इजसाम कब्रों में क़ियामत तक महफूज रहते हैं। अन औसिब ने औस रदी अल्लाह अन्हु काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मिन अफदली अय्यामिकुम यौमुल जुमाती फी ही खुलिक आदम व फी ही कुबिदा व फी ही नफ़खतुन व फी ही साक़तु फ़क्सिरु अलैहि मिनस सलाति फी ही फ़इन सलातकुम मारूदतुन अलैहि। قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تورد صلاتنا عليك وقد أرمت قال يقولون بليتا فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء رواه أبو داود। حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا सब दिनों में जुमे का दिन अफजल है, इसी रोज़ आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी रोज़ इनकी रूह कब्ज़ की गई, इसी रोज़ सूर फूका जाएगा, इसी रोज़ उठने का हुक्म होगा, लिहाजा इस रोज़ मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, तुम्हारा दुरूद मेरे सामने पेश किया जाता है। सहाबे कराम रज़ी अल्लाह हुम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी हड्डियां बोसीदा हो चुकी होंगी, या यूं कहा कि आपका जिस्मे मुबारक मट्टी में रल चुका होगा, तो फिर हमारा दुरूद आपके सामने कैसे पेश किया जाएगा? आपने फरमाया, यह है वो जवाब जो आप लेना चाह रहे थे। आप ही की ज़ुबान से आप मैं सुनेंगे इंशाल्लाह कि आपने क्या फरमाया। अल्लाह ताला ने अम्बिया के जिस्म ज़मीन पर हराम कर दिए हैं, यह अबू दाऊद की रिवायत है। तो शरह सदर के लिए यह हदीस काफ़ी है कि अम्बिया कराम के जिस्म कब्रों में ऐसे ही रहते हैं जैसे कि अपनी मौत के वक्त थे। फिर उसके बाद बाकी लोगों के साथ क्या होता है, सेकंड थिंग देखिएगा, औलिया, सुलहा और शुहदा में से जिन जिन के इज्साम को जब तक अल्लाह ताला कब्रों में महफूज रखना चाहते हैं या चाहेंगे, वो भी मट्टी के असर से महफूज रहते हैं। यानी अम्बिया का तो शोर है, ठीक है, हर नबी, लेकिन नेक लोगों में जिसका अल्लाह चाहे, ये मुराद है। ठीक है, दलील ले लीजिए। अन हशाम इब्ने उरवत रहमहुल्लाहु नबी ही लम्मा सक़द अलैहिमुल हाइतु फ़ी ज़मानिल वलीद इब्नी अब्दिल मलकी अखज़ू फ़ी बिनाईही फ़बदत लहुम क़दमुन फ़फ़ज़ियू वज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम फ़मा वजदू अहदन यालमु ज़ालिका हत्ता क़ाल लहुम उरवतु ला वल्लाही मा हिया कदमु नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लमा मा हिया इल्ला कदमु उमर रदियल्लाहु अन्हो रवाहुल बुखारिश। हज़रत हिशाम बिन उरवा रहमहुल्ला अपने बाप से रिवायत करते हैं कि वलीद बिन अब्दुल मलक के ज़माने में जब हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के हुजरे मुबारक की दीवार गिरी तो इसे बनाते वक्त एक पाँव नज़र आया। पहले इमेजिन करें इसको, हज़रत आयशा के हुजरे में आपको पता है ना कि बीच में अल्लाह के नबी की लहद है, राइट साइड पे अबू बकर और लेफ्ट साइड पे उमर फारूक है, और हज़रत आयशा ने ये उमर फारूक वाली जगह अपने लिए रखी भी थी। लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पे जब हमला हुआ, खून निकल रहा था, नज़ा की हालत थी, तो इन्होंने एक पैगाम भेजा था कि अपनी माँ आयशा से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे नबी के पहलू में दफन होने की सआदत मिले। तो हज़रत आयशा सिद्दीका ने उस पे जो पैगाम दिया था कि जगह ये मैंने अपने लिए रखी हुई थी, लेकिन मैं उमर को अपने ऊपर फौकियत देते हुए इसकी इजाज़त देती हूँ। ये थे उमर के और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के आपस के ताल्लुकात। और आज कुछ लोग क्या कुछ नहीं बोल जाते, तो याद रखिए कभी भी ऐसी बात ना करें। तो ये जो पाँव नज़र आया तो लोग घबरा गए और समझे कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदमे मुबारक है। लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसे आपका पाँव मुबारक पहचानने में यकीनी इल्म होता। यहाँ तक कि हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर कौन थे, आयशा सिद्दीका के भांजे, इनकी माँ का क्या नाम होगा, हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हा, उन्होंने लोगों से कहा, वल्लाही ये कदम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो का है। बुखारी की रिवायत है। सोच के कुछ हो रहा, यानी वाकई खुदाई के दौरान वो पाँव ज़ाहिर हो गया तो ठीक था, तो ज़ाहिर हुआ ना, ये मुराद है। तो क्या पता चला कि सहाबा के भी जिस्म महफूज हैं। तीसरी चीज़, शुहदाए उहद कितने थे, 70 लोग थे, उनके इज्साम यानी बॉडीज़ 46 बरस यानी 46 ईयर्स बाद भी पहले की तरह तरोताज़ा पाए गए। दलील, अन अब्दुर्रहमान इब्ने अबी सता रहमहुल्लाहु अन्नहु बलगहु अन्ना अमर इब्न अलजमूही रदियल्लाहु अन्हु। क्या जानते हैं अमर बिन जमूह के बारे में आप, कुछ पता है इनका, लंगड़े थे, आरज, एक टांग से चलते थे। व अब्दुल्लाह इब्ने अमरिन रदी अल्लाहु अन्हो अल अंसारी यीना सुम्मा सुम्मा सलामी यीना काना कद खफर सैलू मिन कबरी हिमा व काना कबर हुमा मिम्मा यली सैला व काना फ़ी कब्रें वाहिदें व हुमा मिम्मन इस्तुश्खिदा यौमा उहुदिन फ़खुफिरा अन्हुमा लियुगैयरा मिम मकानिहिमा फवुजिदा लम यतगैयरा कान्नहुमा माता बिलमसी वकान अहदुहुमा कद जुरिहा फवदा यदहु अला जुरहिही फदुफिना वहुवा कजालिका फउमीतत यदुहु अन जुरहिही सुम्मा उर्सिलत फरजात कमा कानत वकान बैन उहुदिम व बैन यौमिन खुफिरा अन्हुमा सित्तुम वर्बाउन सना रवाहु मालिक, यानी इमाम मालिक की रिवायत है ये। अब्दुर्रहमान बिन अबू सासा रहमहुल्लाह से रिवायत है कि अमर बिन जमूह और हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर अल अंसारी सलमा दोनों जंगे उहद में शहीद हुए थे। पानी के बहाव ने इनकी कब्र को उखेड़ दिया था और करीब था कि इनकी कब्र बह जाती। दोनों हजरत एक ही कब्र में दफन किए गए। कोई इसका सवाल लिख ले, बहुत थोड़े लोगों को पता होगा ये, तो याद रहेगा इंशाल्लाह सुनने वालों को। खैर, इनकी कब्र खोदी गई ताकि इनकी मैयत निकाल कर दूसरी जगह दफन कर दी जाए। दोनों हजरात की मैयतों में कोई तब्दीली यानी तगैयुर वाक़े नहीं हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे अभी कल ही शहीद हुए हैं। दोनों हजरात में से एक को जब जख्म लगा तो उसने तकलीफ़ की वजह से अपना हाथ जख्म पर रख लिया था। जब इनको इस जगह दफन करने लगे तो लोगों ने इनका हाथ हटाना चाहा, लेकिन वो फिर वही जख्म की जगह आ लगा। कब्र खोदने का वाकया गज़वे उहद के 46 साल बाद का है, इसे मालिक ने रिवायत किया। अल्लाह ज़ाया नहीं करता। जो लोग कुर्बानियाँ दे के चले जाते हैं ना दुनिया से, अल्लाह फिर उनको निशान बनाता है। तो इससे क्या पता चला कि उहद में शहीद होने वाले ये दो लोग दलील बन गए दुनिया के लिए कि शुहदा के भी जिस्मों को अल्लाह ताला चाहे अगर तो महफूज रखता है। चलिए आगे, चौथी किस्म के लोग, अंबिया के अलावा बाकी लोगों के इज्साम में से रीढ़ की हड्डी के अलावा बाकी सारा जिस्म मट्टी खा जाती है। आप मेरे से दोहराएंगे इस हदीस को भी इंशाल्लाह। अनबी हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु काल काल रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा शैयुन मिनल इंसानी इल्ला यबला इल्ला अज़मम वाहिदन वहुवा अजबुल ज़म्बी व मिन्हु युरक्कबुल खल्कु यौमल क़ियामा। रवा खुब नुमाजा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिवाय एक हड्डी के इंसान का सारा जिस्म मट्टी में रुल मिल जाता है। वो रीढ़ की हड्डी है, क़यामत के रोज़ इसी से इंसान की तख्लीक होगी। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। जैसे एक बीज ज़मीन में कहीं ना कहीं छुपा होता है ना, तो उसके बाद बारिश का पानी आता है तो खुद ब खुद वहाँ से पौधा उग जाता है। इसी तरह कब्रों से हम उठाए जाएंगे। कुरान में इसकी कोई दलील है? अम्बता का लफ्ज़ है, नबातन, यानी जैसे उगता है ना, नबातात कहते हैं वेजिटेबल्स को, यानी जैसे ज़मीन से घास चारा और इसी तरह की ग्रीनरी निकलती है, तो क़यामत में सूर फूंका जाएगा, जब सब लोग बेहोश हो जाएंगे, फौत हो जाएंगे, उसके बाद बारिश होगी। 40 साल तक वो बारिश रहेगी। अब वो साल क्या होगा, किस तरह की उसकी कैफियत है, यहाँ पर मैं नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला इंसानों को वहाँ से उगाएगा, और कैसे उगाएगा, जैसे कि ज़मीन से बंदा उगता है। तो कह लीजिए कि ये बीज के तौर पर छोटी छोटी चीज़ें हमारी मौजूद रहेंगी। खुलासा क्या है, अंबिया कराम 100%, रसूल 100%। उसके बाद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि कई लोग देखे जल जाते हैं। अब हैं शहीद लेकिन जल गए, अब उनकी बॉडी तो जली हुई है, तो फिर ये एक्सेप्शन हो गई ना। तो इसलिए फिर इस चीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा वक्त ना लगाएं। मैं हमेशा ऐसी बातों पे ज़्यादा सोचने से बेहतर ये समझती हूँ कि इंसान इल्म का कोई बाप पढ़ ले, दुआ कर दिया करें। आपका दिल चाहता है कि आपकी मट्टी आपके जिस्म को ख़राब ना करे, चाहता है ना दिल? अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह कब्र से ऐसे ही निकलूँ। आप देखिए, शहीद ऐसे निकलेगा कि उसका खून बह रहा होगा। हज और उमरे के दौरान यानी अहराम की हालत में जो शख्स फौत हो जाएगा, वो तलबिया पढ़ता हुआ उठेगा। तो दुआ ये करें, दुआ ये करें, आखिरी दम तक अल्लाह के रास्ते के काम करती रहो। जो अल्लाह ताला ने मुझसे काम लेना है, मरते दम तक करती रहो। रिटायरमेंट का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है। अबू बकर आखिरी दिन तक खलीफा थे, उमर फारूक भी थे। ये तो आज की दुनिया का जो है ना, कि जब बंदा खूब अच्छा काम कर चुका होता है तो पेंशन लग जाती है, रिटायर्ड कर दिया जाता है, हालांकि वो तो तजर्बों का पहाड़ बन चुका होता है। तो ये पूरी दुनिया में, इसके ऊपर मैं आप क्या कहें, लेकिन इस्लाम कहता है कि वला तमूतुन्ना इल्ला वान्तुम मुस्लिमून।